हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 279 अनय अपने बेडरूम के बाहर खड़ा था। थोड़े से खुले दरवाजे से झांककर वो अंदर देख रहा था और कान लगाकर मनस्वी और विराज की बातें सुनने की कोशिश कर रहा था, किंतु उसे कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। अनय के मन में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। उसे पता था कि दोनों जरूर आदित्य के खिलाफ कुछ बातें कर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल मनस्वी उसके खिलाफ ही सोचती रहती थी। वो कैसे अपनी कंपनी को नंबर वन बना पाए सिंघानिया इंडस्ट्रीज को पीछे करके, क्योंकि उसके रास्ते में सिर्फ वही एक प्रतिस्पर्धा थी। नहीं मनस्वी, नहीं, मेरे रहते तुम आदित्य के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं कर पाओगी, और अगर तुम्हें इतना ही भरोसा है तो फिर सामने से खुला प्रतिस्पर्धा करो। इस तरह पीठ पीछे वार करके कोई खुशी नहीं मिलेगी, अनय ने अपने आप से वादा करते हुए कहा। उसे साथ ही आदित्य का नाम भी सुनाई दे रहा था, लेकिन आदित्य के साथ ही विराज ने एक दो बार सुनैना का नाम भी लिया था, क्योंकि अब सुनैना कंपनी की स्वामी थी और ये बात अनय भी अच्छी तरह जानता था। इसलिए उसे लग रहा था कि वे लोग अभी भी व्यापार से संबंधित बात ही कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक तरह से पूरी बात समझ नहीं पाया। सुनने के लिए अनय थोड़ा सा आगे बढ़ा। दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था, इसलिए उसके हल्का सा आगे बढ़ते ही दरवाज़ा पूरी तरह अंदर की तरफ खुल गया और वो भी एकदम से लड़खड़ाकर कमरे के अंदर गिर गया। उसके इस तरह एकदम से गिरते पड़ते कमरे में आने से मनस्वी और विराज दोनों का ध्यान उसकी ओर गया और वे दोनों एकदम चुप हो गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मनस्वी ने एकदम से पूछा। बातें खत्म नहीं हुई अब तक तुम दोनों की, और वैसे भी ऐसी क्या महत्वपूर्ण बात कर रहे हो तुम लोग इतनी देर से? मनस्वी की बात का जवाब देने के बजाय उसने एक और सवाल किया। उसकी इस बात पर मनस्वी सामने खड़े विराज की तरफ देखने लगी, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि वो अनय की बात का क्या जवाब दे। और वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही विराज अनय की तरफ बढ़ते हुए बोला, क्या बात है जीजू, कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गई है आप में, इस तरह से सीधे सीधे सवाल कर रहे हो आप, और वैसे भी उन्होंने कब आपको कुछ भी बताया है जो अब बताएंगी? अनय को भी कहीं ना कहीं इस बारे में पता था कि विराज उन दोनों के रिश्ते का सच जानता है, लेकिन मनस्वी ने उसे इस तरह से पूरी बात बता दी होगी कि वो सामने से उसकी निंदा कर रहा है, इस बात की अनय को पता नहीं क्यों उम्मीद थी। इसलिए जब विराज ने उसका मजाक उड़ाया तो उसने बेबसी से मनस्वी की तरफ देखा। मनस्वी को भी कहीं ना कहीं विराज का इस तरह से बोलना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो तुरंत ही उसे चुप करवाते हुए बोली, चुप कर विराज, मैंने तुम्हें इतनी छूट नहीं दी है कि तुम हम दोनों के बीच में इस तरह कुछ भी बोलो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनय की निंदा करने की? भूल मत, वो मेरा पति है। उन दोनों की शादी के इतने महीनों में आज पहली बार मनस्वी ने अनय को इस तरह से बचाव किया था और उसे अपना पति कहा था। इस बात पर अनय को तो यकीन ही नहीं हो रहा था और ना ही विराज को, इसलिए मनस्वी की बात सुनते ही उन दोनों के मुंह हैरानी से खुले के खुले रह गए। उन्होंने सही सुना, इस बात का यकीन करने के लिए वे उसकी तरफ भी देख रहे थे। ऐसा नहीं है कि अनय खुद को बचाव नहीं कर सकता था, लेकिन जब भी बात उनके रिश्ते की आती थी तो वो कुछ भी नहीं बोल पाता था, क्योंकि विराज कहीं ना कहीं सच ही बोल रहा था और उसे लगा था कि अगर वो कुछ भी बोलेगा तो मनस्वी जरूर उसके खिलाफ जाएगी और फिर उसके बोलने का कोई फायदा नहीं। बस यही सोचकर वो चुप था, लेकिन अब जब मनस्वी ने उसकी तरफदारी की तो उसे कहीं ना कहीं थोड़ी सी उम्मीद जागी अपने और मनस्वी के रिश्ते को लेकर। तभी विराज ने एकदम से कहा, दी, लेकिन आप तो इसे अपना पति नहीं मानती ना, और आप दोनों के बीच का रिश्ता? हमारे बीच का रिश्ता जो भी हो विराज, ये तुम्हारी चिंता की बात नहीं है, और हमारी बात वैसे भी खत्म हो गई तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मनस्वी ने एकदम गंभीर चेहरे के साथ कहा। मनस्वी की ये बात सुनकर विराज भी वहाँ पर नहीं रुका और तुरंत ही पैर पटकते हुए उनके कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही अनय ने सीढ़ियों से जाकर बाहर की तरफ देखा तो उसे वो नीचे की सीढ़ियां उतरता हुआ नजर आया। उसे वहां से जाते देख अनय ने राहत की सांस ली। मनस्वी की तरफ देखते हुए वो कुछ बोल पाता उससे पहले मनस्वी भी उसकी साइड से निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी तो अनय ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोला, मनस्वी, देखो, तुम जो भी कर रही हो बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही हो। उसके इस तरह एकदम हाथ पकड़ने पर वो भी रोक गई और पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या ठीक नहीं कर रही हूँ मैं? और मुझे लगा तुम शायद थैंक यू बोलोगे, लेकिन ये मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? थैंक यू किस बात का? हमारे रिश्ते का पूरा सच विराज को बता देने के लिए थैंक यू बोलूं मैं तुम्हें? अनय ने उसे ताना मारते हुए कहा और साथ ही उसका हाथ भी छोड़ दिया। अनबिलीवेबल यू आर, तुम्हें सच में लगता है मैंने विराज को इस बारे में बताया होगा? मनस्वी ने थोड़ी मायूसी से कहा। अच्छा, तुमने नहीं बताया तो फिर उसे इतना सब कैसे पता चला? चलो माना तुम्हारा कजिन है और उससे तुम्हारी काफी अच्छी बनती भी है, लेकिन अगर उसने मुझे इतना कुछ बोला और जो कुछ भी कहा हमारे रिश्ते को लेकर, वो सच ही है, लेकिन उसे कैसे पता चलेगा? अनय ने मनस्वी की तरफ गढ़ते हुए उससे सवाल किया, तो मनस्वी अपनी जगह से कुछ कदम पीछे हटते हुए बोली, हमारा रिश्ता अनय, तुम शायद बोल रहे हो कि मेरी माँ से पहले हमने कभी किसी के भी सामने पति पत्नी जैसा अभिनय नहीं किया है, और वो इतना भी बेवकूफ नहीं है कि उसे कुछ भी समझ न आए, और तुम्हें यकीन हो या नहीं, लेकिन मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया और उससे मैं कुछ और बात कर रही थी। हाँ हाँ, पता है मुझे भी, इस शादी के कोई मायने नहीं है और हम दोनों ने ही कभी इसे नहीं माना, लेकिन फिर आज तुमने उसके सामने मुझे अपना पति क्यों कहा? क्या तुम सच में मुझे अपना पति मानती हो? अनय ने उसकी आंखों में झांककर देखने की कोशिश करते हुए सवाल किया। अनय, तुम ये क्या पूछ रहे हो? वो सब मैंने बस ऐसे ही उस वक्त बोल दिया और इतना नहीं सोचा, लेकिन अभी मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। इतना बोलकर मनस्वी उसकी साइड से निकलकर सीधा ही दरवाजे की तरफ बढ़ी और फिर कमरे से बाहर निकल गई। मनस्वी को खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने विराज के खिलाफ जाकर अनय को सहारा दिया, और उसे ये भी समझ नहीं आया कि उसे इतना बुरा क्यों लगा जब विराज ने अनय की निंदा की और उन दोनों के रिश्ते के बारे में इतना कुछ बोला। लेकिन आखिर उसने जो कुछ बोला वो सच ही तो था, तो फिर क्यों मनस्वी वो सब नहीं सुन पाई? आउटडोर शूटिंग लोकेशन। आज शूटिंग का आखिरी दिन था और शूटिंग लगभग पूरी हो गई थी। इस बीच नैना ने पूरी तरह से मानस को अनदेखा किया और वो ज्यादातर समय किसी न किसी के साथ ही रहती थी, जिसे कि अकेला पाकर मानस उससे मिलने बातें करने न आ जाए, और मानस के साथ उसका बस एक सीन नहीं जम रहा था जो नैना ने किसी तरह तीन टेक में पूरा कर लिया। उसके और विवान के सारे दृश्य भी अच्छी तरह से पूरे हो गए थे और सभी ने उसकी काफी तारीफ की, क्योंकि उसने इन सब में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया था और सिया के साथ काफी अच्छी अभिनय किया था, और इसके अलावा वो सभी के साथ अच्छी तरह से पेश आती थी। अपने सह कलाकारों, जूनियर आर्टिस्ट और बाकी सारे मेकअप आर्टिस्ट और जितने भी लोग वहाँ सेट पर काम करते थे, उन सब से बहुत अच्छे से विनम्रता से बात करती थी। उसके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं था।
विवान और उसका रिश्ता भी अब तक काफी अच्छा हो गया था, लेकिन इन सब में किसी का रिश्ता अनदेखा हुआ है, तो वो है उसका और अक्षत का रिश्ता। इस दौरान उसकी अक्षत से काफी कम बात हो पाती थी, क्योंकि जब वो अपनी शूटिंग खत्म करके रिसॉर्ट पहुंचती थी, उस वक्त अक्षत अपनी फिल्म की देर रात की शूटिंग में व्यस्त होता था, इसलिए पिछले तीन दिनों में उनकी सिर्फ एक बार ही बात हुई थी। डायरेक्टर ने वहां की लोकेशन का पैकअप बोल दिया और सभी को वापस रिसॉर्ट जाने के लिए कहा, क्योंकि उन सबकी रात की ही उड़ान थी, जिससे वे सब सुबह मुंबई वापस पहुँच जाएंगे। नैना अपने होटल के कमरे में वापस आई और उसने वापस आते ही सबसे पहले ये बात बताने के लिए अक्षत को कॉल लगाया, लेकिन उसकी अक्षत की बजाय अजय से बात हुई, और दूसरी तरफ से अजय की आवाज़ सुनते ही नैना की सारी उत्सुकता एकदम ही खत्म हो गई, और उसने अजय से सिर्फ इतना कहा कि वो कल सुबह तक वापस आ जाएगी, इस बारे में अक्षत को सूचित कर देना, और अजय ने भी ओके मैम बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अजय ने नैना को बता दिया था कि अक्षत इस वक्त एक स्टंट शूट करने में व्यस्त है, और अक्षत ने जानबूझकर ये रात की शिफ्ट लगवाई है अपनी फिल्म की शूटिंग की, क्योंकि वो श्वेता को अनदेखा करना चाहता है, जो कि जब से उसके बंगले के पास रहने के लिए आई है, जब भी देखो तब उसके घर चली आती है, मुंह उठाकर किसी न किसी बहाने से और अक्षत के साथ घनिष्ठ होने की भी कोशिश करती है, लेकिन अक्षत उसे ज्यादा मौका नहीं देता और वो लगातार उससे पार्टी के लिए पूछ रही है, क्योंकि वो अक्षत के हिसाब से ही पार्टी का दिन और समय तय करने वाली है। अक्षत का वहां उसकी पार्टी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, इसलिए ही वो ज्यादातर वक्त अपनी फिल्म के सेट पर ही बिताता है। इस बारे में उसने नैना से भी बात की थी, तो नैना ने कहा था कि उसे चले जाना चाहिए, लेकिन उसने नैना को बाकी सारी बातें अब तक नहीं बताई हैं श्रद्धा के बारे में, और इसके अलावा वो चाहता है कि एक बार नैना वापस आ जाए तो अगर उसे जाना ही पड़ा तो फिर वो नैना के साथ ही वहां चला जाएगा, और श्वेता जिस तरह से उसके साथ बर्ताव करती है उस बारे में भी वो नैना को जल्द से जल्द बताना चाहता है, लेकिन उसकी नैना से बात नहीं हो पा रही तो वो भी उसे काफी याद कर रहा है। क्रमशः